ये आकाशवाणी है। अब आप निखिल कुमार से समाचार सुनिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी थाईलैंड के बैंकॉक में बहुक्षेत्रीय तकनीकी और आर्थिक सहयोग के लिए बंगाल की खाड़ी स्थित देशों की पहल बिम्स्टेक के छठे शिखर सम्मेलन में भाग ले रहे हैं। इस सम्मेलन का विषय है बिम्स्टेक समृद्ध समायोजी और समावेशी। इस दौरान बैंकॉक दृष्टिपत्र 2030 अनुमोदित किया जाएगा और भावी रणनीति तय करने के लिए बिम्स्टेक गणमान्य व्यक्ति समूह की रिपोर्ट का भी अनुमोदन होगा। एक रिपोर्ट।
बिम्स्टेक बंगाल की खाड़ी में स्थित 7 देशों बांग्लादेश, भूटान, भारत, म्यांमार, नेपाल, श्रीलंका और थाईलैंड का एक समूह है। इसके अलावा यह एकमात्र ऐसा क्षेत्रीय संगठन है जो दक्षिण एशिया के 5 देशों और दक्षिण पूर्व एशिया के 2 देशों को एक मंच पर लाता है। बिम्स्टेक वैश्विक जनसंख्या, GDP और बाहरी व्यापार के एक महत्वपूर्ण हिस्से को भी दर्शाता है। भारत बिम्स्टेक के 4 संस्थापक सदस्यों में से एक है। बिम्स्टेक के सदस्य देशों के साथ भारत के घनिष्ठ द्विपक्षीय संबंध हैं जो भारत को क्षेत्रीय सहयोग बढ़ाने में अग्रणी भूमिका निभाने में सक्षम बनाते हैं। सुपर्णा सैकिया के साथ अक्षित वैद्यान, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
प्रधानमंत्री 2 दिन की थाईलैंड यात्रा पर कल बैंकॉक पहुंचे थे। बिम्स्टेक शिखर सम्मेलन के बाद श्री मोदी आज अपनी यात्रा के दूसरे चरण में श्रीलंका जाएंगे। श्रीलंका की 3 दिन की यात्रा के दौरान वे राष्ट्रपति अनुरा कुमारा दिसानायके के साथ द्विपक्षीय वार्ता करेंगे। वक्फ संशोधन विधेयक 2025 संसद में पारित हो गया है। राज्यसभा ने 12 घंटे की चर्चा के बाद इसे मंजूरी दी। 128 सदस्यों ने इस विधेयक के पक्ष में और 95 ने विपक्ष में मतदान किया। लोकसभा से यह विधेयक पहले ही पारित हो चुका है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि संसद के दोनों सदनों से वक्फ संशोधन विधेयक और मुसलमान वक्फ निरसन विधेयक पारित होना सामाजिक न्याय, आर्थिक न्याय, पारदर्शिता और समावेशी विकास की दिशा में एक ऐतिहासिक अवसर है। श्री मोदी ने एक सोशल मीडिया पोस्ट में संसदीय समिति के विचार विमर्श में भाग लेने वाले सभी सांसदों का आभार व्यक्त किया। प्रधानमंत्री ने उन लोगों को भी धन्यवाद दिया जिन्होंने संसदीय समिति को अपने बहुमूल्य सुझाव भेजे थे। श्री मोदी ने कहा कि वक्फ प्रणाली में दशकों से पारदर्शिता और जवाबदेही का अभाव रहा जिससे निर्धन मुस्लिमों, महिलाओं और पसमांदा मुसलमानों के हितों को नुकसान पहुंचा। संसद ने मणिपुर में राष्ट्रपति शासन लगाए जाने की पुष्टि करने वाले सांविधिक प्रस्ताव को स्वीकृति दे दी है। राज्यसभा ने आज तड़के इसे मंजूरी दी। ये प्रस्ताव इस वर्ष 13 फरवरी को संविधान के अनुच्छेद 356(1) के तहत मणिपुर में राष्ट्रपति शासन की घोषणा से संबंधित है। लोकसभा इसे पहले ही मंजूरी दे चुकी है। संसद ने विमानन सामग्री हित संरक्षण विधेयक 2025 पारित कर दिया है। लोकसभा ने इसे कल मंजूरी दी थी और राज्यसभा पहले ही स्वीकृत कर चुकी है। विधेयक में विमानन उपकरणों से संबंधित हितों की सुरक्षा का प्रावधान है। इसमें 2001 में केपटाउन में स्वीकृत मोबाइल उपकरण अंतर्राष्ट्रीय हित संधि और विमानन सामग्री संबंधी अंतर्राष्ट्रीय हित संधि की प्रोटोकॉल लागू करने का भी प्रावधान है। जाने माने अभिनेता और निर्देशक मनोज कुमार का आज सुबह मुंबई में निधन हो गया। वे 87 वर्ष के थे। अपनी देशभक्ति फिल्मों के लिए वे भारत कुमार के नाम से भी प्रसिद्ध थे। दशकों तक भारतीय सिनेमा में अतुलनीय योगदान के लिए उन्हें प्रतिष्ठित पद्मश्री और दादा साहब फाल्के पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। मनोज कुमार ने फिल्म जगत को उपकार, पूरब और पश्चिम, क्रांति जैसी उत्कृष्ट फिल्में दी थी। उनकी कुछ अन्य लोकप्रिय फिल्में पत्थर की सनम, शोर, सन्यासी तथा रोटी कपड़ा और मकान है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मनोज कुमार के निधन पर गहरा दुख व्यक्त किया है। एक सोशल मीडिया पोस्ट में उन्होंने कहा कि मनोज कुमार भारतीय सिनेमा के विशिष्ट हस्ती थे जिन्हें उनकी देशभक्ति फिल्मों के लिए विशेष रूप से याद किया जाएगा। मध्य प्रदेश के खंडवा में एक कुएं में जहरीली गैस के कारण दम घुटने से 8 लोगों की मृत्यु हो गई। गणगौर विसर्जन के लिए कुएं की सफाई करने के लिए 3 लोग दलदल में फंस गए थे। उन्हें बचाने उतरे 5 अन्य लोग भी वहां फंस गए लेकिन ये सभी जहरीली गैस का शिकार हो गए। मुख्यमंत्री डॉ मोहन यादव ने दुर्घटना पर दुख और संवेदना व्यक्त की है। उन्होंने मृतकों के परिजनों को 4-4 लाख रुपए की आर्थिक सहायता देने की घोषणा की है। पाकिस्तान की एक हिंदू महिला ने अटारी वाघा बॉर्डर पर बच्ची को जन्म दिया है। कल शाम भारत में एकीकृत चेक पोस्ट पर पहुंचने के तुरंत बाद इस बच्ची का जन्म हुआ। भारत में जन्म लेने के कारण बच्ची का नाम भारती रखा गया है। इस महिला का नाम माया है। आईपीएल क्रिकेट प्रतियोगिता में आज लखनऊ सुपर जायंट्स और मुंबई इंडियंस के बीच मुकाबला होगा। ये मैच लखनऊ में शाम 7:30 बजे से खेला जाएगा। इधर 15वीं हॉकी इंडिया सीनियर पुरुष राष्ट्रीय चैंपियनशिप आज उत्तर प्रदेश के झांसी में मेजर ध्यानचंद हॉकी स्टेडियम में शुरू होगी। इसके साथ ही समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।